ओम शांति। राजीव की प्रयोगशाला का आज का 12वां दिन है। तो आज साकार मुरली जो है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में जो खास शिक्षाएं दी हैं और स्वयं को भी कहा है कि मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर और सदगुरु हूँ। और रूहानी यूनिवर्सिटी कम कॉलेज में सबको पढ़ाता हूँ, तो हम हो जाते फिर गॉडली स्टूडेंट। जब टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट बुद्धि में रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। तो बाबा ने फिर एक गीत चलाया क्लास में, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। तो बाबा ने पूछा कि चिंतन चला प्रश्न कि ये किसने कहा, तो बाप ने कहा या टीचर ने कहा या सदगुरु ने? हाँ, तीनों ने कहा। तो लेकिन पहले तो बाप याद आना चाहिए, वेद का बाप पढ़ाने वाला। तो बाप के साथ साथ वही हमारा टीचर भी है तो सदगुरु भी है, और बेहद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो बाबा इसे अनेक राज इस यूनिवर्सिटी में खोलते हैं। जैसे आधा कल्प से जो राज छुपा हुआ था वो अभी आकर संगम युग में ये खोलते, गुहरा से खोलते विश्व की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। भल शास्त्रों में भी था लेकिन उसको थोड़ा मुंझा दिया गया था, लेकिन वो सभी शास्त्रों का सार रूप में हमें समझाते हैं। तो वेद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ माना भारत का प्राचीन राजयोग, जिसको अभी वो अभी वर्तमान में हठ योग में कन्वर्ट हो गया। तो आज भी सरकार ने जो 21 जून को दिन डिक्लेयर किया है कि 21 जून को सारे विश्व में मनाया जाता है, तो वो भारत का प्राचीन योग के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो करते हट योग है आसन और प्राणायाम, लेकिन वो जो मेन चीज छुपी हुई है वो उड़ गई है कि निराकार बाप को याद करना, क्योंकि यथार्थ परिचय न होने के कारण यह सब विस्मृति हो गई है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है माया का, विस्मृत करने का। तो माया इसमें विघ्न डालती है, कैसे वो भुला देती है। जैसे बाबा ने भी आज दावा किया है मुरली में कि सारा जो विश्व की जो प्रॉपर्टी, सारा जो रचता है विश्व के रचता है, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो रावण ने अपनी बना ली है। तो अभी प्रॉपर्टी अभी बाबा को खास दिलानी है, तो हम सभी सहयोगी है कि मैं करके मेरी कर दी गई है, लेकिन अभी मेरी सो तेरी करना है, तो ये बाप की हो जाएगी। तो है ही बाप की, लेकिन सिर्फ नाम चेंज करना है। तो इस प्रकार माया ने सब ये विस्मृत कर दिया है। तो बाबा फिर अभी आके हमें खास संगम युग पर ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम वही हो कल्प पहले वाले जो ये पढ़ाई पढ़ी थी। तो बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। तो ज्ञान का सागर होने के कारण अथाह है। कल भी मुरली में, कल की अव्यक्त मुरली में भी बोला था, कितना भी पदम गुना ये बांट लो खजाना, लेकिन ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी, इतना अखूट खजाना बाबा के पास है। तो ज्ञान के सागर है, इसकी महिमा भी है कि सागर को स्याही बना लो, धरती को कागज बना लो, जंगल को कलम बना लो। नहीं नहीं, ज्ञान की देवी अगर लिखने जाए तो भी महिमा खत्म नहीं होगी। तो इतना ज्ञान का सागर बाबा आए हैं और हम ये ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। तो पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सार रूप में समझाते हैं। तो बाबा को भी कहा गया त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान का सागर। तो वही अभी हमें फिर से मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। फिर इस आज की मुरली में जो कहा कि जो पहले आत्मा फिर शरीर आता है, तो जो भी शरीर पर ऑक्यूपेशन का नाम पड़ता है, कोई कहते कि मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, लेकिन वो आत्मा करती है, जो भी पुरुषार्थ करती है आत्मा, शरीर तो बाद में है। तो जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की जाती है भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में, तो पढ़ने वाली आत्मा होती है जो पुरुषार्थ करती है, लेकिन वो ये मैं और मेरा का भेद जो न ही जानने के कारण सब अपने नाम मान श्याम से आगे बढ़ते हैं। तो सारा देह के नाम पर ही ये धंधा या व्यवसाय होता है। तो ये बाबा ने क्लियर किया है कि देह तो बाद में आती है, पहले है आत्मा। तो इस प्रकार बाबा ने कहा था आत्मा के ऊपर। फिर कहा बाबा ने कि मैं तो निराकार हूँ और भेद का बाप हूँ, निराकार हूँ भेद का बाप हूँ और मेरा नाम ही शिव है। तो शिव नाम सिर्फ आत्मा पर ही पड़ता है, तो परम आत्मा, बाकी सभी जो भी नाम पड़ते हैं शरीरों पर। तो ये खास स्पष्ट किया है ये मुरली में। और बाबा ने कहा कि क्राइस्ट को बारे में कहा, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, तो क्राइस्ट की आत्मा भी ऊपर से आती है, लेकिन जब आती है तो सतो प्रदान होती है, फिर आगे कुछ जन्म के बाद रजो और तमो में आती है। तो पहले हम ज्ञान में आने के पहले तो वही एक ही समझते थे कि एक यीशु क्रिस्त या क्राइस्ट, लेकिन बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि दूसरी आत्मा है जो धर्मस्थापक है, वो प्रवेश करती है और वो जो पहले वाली जो आत्मा है शरीर धारण की, उसमें उसके तन में प्रवेश करके वो जो धर्म का जो धारणा सिखाते हैं उस समय, तो ये धर्मस्थापक आत्मा बन जाती है। तो दुख जैसे उसको सूली पर चढ़ाया गया क्राइस्ट को, तो दुख जो हुआ जो शरीर धारण की हुई आत्मा थी उसको हुआ, उसकी गलती तो नहीं, ये ड्रामा में पार्टी कहेंगे भले वो भी उस समय तो सत्व प्रधान ही आई हुई होंगी। या फिर हो सकता है उसकी एक दो जन्म पहले कर लिए होंगे तो उसकी सजा है। अच्छा ब्राह्मण आत्मा, अच्छा ब्राह्मण थे। तो दुख लेने वाली आत्मा वो थी। तो ये भाई बाबा ने स्पष्ट किया। फिर आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी राज्य था, तो सूर्यवंशी राज्य देवी देवताओं का जो हमने जिसमें पार्ट बजा चुके हैं, लेकिन हम तो सब भूले हुए थे। ज्ञान में आने के बाद ही हमें पता चला कि हम ही वही देवी देवता है, सूर्यवंशी राजघराने के हैं। तो ये 63 जन्म जैसे एक प्रकार से अंधकार में ही थे, अज्ञान अंधकार में। भले हम गाते थे महिमा, पूजा भी करते थे, लेकिन हम ही हैं वो नहीं जान पाते थे। तो यहाँ वही सूर्यवंशी राजघराना बाबा आकर हमें स्थापन करा रहे हैं और हमें उसके भागी बना रहे हैं। तो सूर्यवंशी घराना जो जिसका गायन भी है शास्त्रों में कि सूर्यवंशी माना एक उसको ही मानते थे, सूर्य की उपासना करते थे या उस इष्ट मानते थे, इष्ट देव वही एक एक ही कुल श्रेष्ठ कुल माना जाता था उस समय। और उस जैसे राजा जन दशरथ, राजा जन दशरथ रामायण में सूर्यवंशी कुल का दिखाया गया है। तो हम ही अभी बाबा हमें भी सूर्यवंशी कुल के लायक बना रहे हैं। फिर बाबा को कहते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ, भोलानाथ शिव बाबा बिगड़ी को बनाते हैं। तो ये माया ने पूरा बिगाड़ के रखा है पूरा जो पूरा जो चौपट करके रखा है फिर क्योंकि हम एक प्रकार से बुद्धि को ताला लगा दिया है कि हम कौन थे, कहाँ से आए, कब आए। हाँ, और पांचों विकार आत्मा में भर दिए। तो एक प्रकार से बिगड़ गया खेल। तो फिर से बाबा आके उस खेल को सुधारते हैं और हर आत्मा के पार्ट को भी सुधारते हैं और विकारों की गट निकाल देते हैं। तो बिगड़ी को बनाने वाला भी है भोलानाथ बाबा। हाँ, लेकिन बिगड़ी को कौन बनाते हैं? शिव बाबा बनाते हैं, न कि शंकर, क्योंकि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर एक कर दिया। तो भक्त आत्माएं भी उसकी महिमा गाते, शंकर को ही बोलते कि बिगड़ी को बनाने वाले भोलानाथ। लेकिन अभी हमें स्पष्ट हुआ कि नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला एक शिव बाबा ही है। भले भक्त लोग एक ही मान रहे हो लेकिन अभी ये बाबा ने हमें ड्यूटी दी है कि यह राज सबको बताओ, शिव और शंकर का भेद। तो शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। तो ये अभी स्पष्ट कराने को बाबा ने कहा है। हाँ, शंकर। और बाबा ने इस मुरली में कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। शिव बाबा कहते कि मैं एक साधारण बूढ़े तन में आता हूं और यह राज भी सबको समझाना है क्योंकि हाँ आजकल तो ये लहर चल रही है कि लहर चल रही है कि बाबा आ रहे तो उस जब मम्मा शरीर छोड़ी थी उस समय भी ये लहर चली थी कि मम्मा आती है। लेकिन बाबा ने उस समय संदेश दिया था कि ये सब टाइम वेस्ट है तो इसमें नहीं जाना है, अपने निश्चय बुद्धि होके एक बाप में ही निश्चय रखना है कि अनेक प्रकार के प्रलोभन आएंगे माया के लेकिन परख बुद्धि को सतर्क रख के ही हमें आगे बढ़ना है। हाँ वो भी तो ये माया का भी पार्ट हो सकता है। हाँ बाबा ने कहा है किसी की, लेकिन वो समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार। अगर कोई बच्चा मतलब कोई बड़ा आदमी है और वो दूसरों को ज्ञान नहीं समझा पा रहे तो बाबा अचानक ऐसे टाइम में वो प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी शरीर भी आए, टचिंग करते हैं। हाँ टचिंग करते हैं, माना ऐसा ये नहीं कि कोई आए। तो वो समय और परिस्थिति अनुसार, सबके लिए नहीं है वो, कभी 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 हमेशा नहीं। तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि दुनिया में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं तो लोग यही समझते हैं कि रिश्वत लेना चोरी करना, ठगी करना ही भ्रष्टाचार है। लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे पहला भ्रष्टाचार तो मुत्पलिति बोला है, माना काम विकार को, पतितपना, तो ये फर्स्ट विकार है, तो इसमें ही सारी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो द्वापर युग से चल रहा है। तो अभी सारी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इसको विशेष वर्ड कहा जाता है। लेकिन इस अब हम कहते कि जैसे बाबा ने कहा कि पवित्र बनो और पवित्र दुनिया में चलो, पवित्र बनो योगी बनो, तो हम जैसे राज ये दूसरों को समझाते हैं तो सबके मन में फिर प्रश्न उठते हैं, क्योंकि विकार छोड़ेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है। हाँ, तो बाबा फिर इसमें बोलते हैं कि ऐसा समझाओ कि अगर योग बल से हम दुनिया अगर स्थापन कर सकते हैं तो योग बल से बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, तो यह भी राज उनको स्पष्ट करके समझाओ। क्योंकि जब योग बल से जो दुनिया माना तैयार होगी, सतयुग की दुनिया, तो वहाँ सब पूर्ण निर्विकारी होंगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, माना सभी संपूर्ण निर्विकारी, तो वह हो गई ईश्वरीय, ईश्वर द्वारा स्थापन की हुई ईश्वरीय राजधानी। जैसे अभी सारी दुनिया को एक प्रकार से रोग लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है पांचों विकारों का, तो आधा कल्प से ग्रहण चल रहा है, तो सारी दुनिया ही एक प्रकार से महारोगी बन चुकी है। तो महारोगी इसको इस रोग को हटाने के लिए ज्ञान एक रूहानी सर्जन की आवश्यकता होती है, तो रूहानी सर्जन आकर के इस रोग को हटा सकते हैं। हाँ, 7 दिन का कोर्स, 7 दिन का माना भट्टी में बैठना ही पड़ेगा। तो अभी जब कोरोना की लहर चल रही है तो ये भी विश्व में व्याप्त तो बीमारी है, तो सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, तो इसमें भी अनेक प्रकार के नए नए इन्वेंशन तैयार हो रहे हैं, नई नई। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि आगे हॉस्पिटल खाली नहीं होंगे, इतने मरीज बढ़ते जाएंगे, और ऐसी माना लाइन लगी रही रहेगी और दवाइयाँ कम पड़ जाएगी। हाँ, मरेंगे भी इतने, जलाने की टाइम नहीं होगा, लाइन लगेगी, एक साथ जला देते कई जगह तो एक साथ दफना भी देते एक गड्ढा खोद के तो ऐसा भी होता है। तो जितने भी एक बीमारी, नई नई बीमारी निकलेंगी तो उसकी दवाई भी नवी नहीं चाहिए फिर, तो इतना ये बिजी हो जाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा है। अभी भी कहते हैं कि इतनी सारी जो करोड़ों मनुष्य है और इतनी वैक्सीन देने का जो अभियान चल रहा है, अभी 10 करोड़ लोगों को दिया हुआ है टीका उत्सव, अभी 11 से 14 तक मनाया भी जा रहा है, तो लेकिन ये इतना कम है अभी कि नहीं दे सकते एक साथ, एक साल लगेगा बोल रहे पूरा, जैसे अगर 130 करोड़ को भी देंगे तो एक साल के ऊपर ही जाएगा, माना इतना अभियान ये चलेगा। हाँ, तो इतना फिर टीका भी माना उत्पादन होना चाहिए ऐसा है, और दूसरे देशों में भी भेजना भी है, तो इस प्रकार दवाई भी कम पड़ेगी। तो अनेक, ये तो एक बीमारी है कोरोना, फिर बाबा तो बोला हुआ है तो अनेक बीमारियां निकलेंगी और उनकी फिर अनेक नई नई दवाइयां, नया नया रिसर्च कम पड़ जाएंगी। तो ऐसी तो इसलिए बाबा ने बोला है कि सारी दुनिया भी महारोगी बन चुकी है। बाबा ने फिर एक बात कही कि सतयुग में शरीर सत्व प्रधान होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का कंचन काया, और सतयुग इसके लिए फिर बाबा ने उधर एक उदाहरण दिया था कि श्री कृष्ण का जो चित्र है नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें भी इस पुरानी दुनिया को लात मारनी है तो लात मारनी है तो इसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे मुर्दा हो जाता है तो स्मशान में ले जाते हैं तो हाँ शहर जैसे यहाँ से ले जाते हैं तो स्मशान की तरफ पैर होता है और शहर की तरफ सिर होता है, लेकिन जब स्मशान में पहुंच जाता है तो सर स्मशान की तरफ और शहर की तरफ पैर। तो ऐसे ही हमें भी इस पुरानी दुनिया को लात मारनी है। हाँ तो फिर एक याद की पॉइंट बाबा ने बोली कि स्वीट होम को याद करते करते स्वीट होम में चले जाएंगे। तो स्वीट होम अपना कौन सा है? परम धाम। हाँ मधुवन तो इस स्थूल दुनिया का है। हाँ तो उस परम धाम को याद करते करते स्वीट होम में चले जाना है। फिर याद की पॉइंट और दूसरी कही कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और यही भारत का प्राचीन राजयोग है। और भक्ति में हठ योग सिखाते हैं और अभी बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। तो हठ योग में शरीर का ध्यान होता है और राजयोग में पूरा आत्मा का, मन बुद्धि के द्वारा हम जो राजयोग करते हैं तो आत्मा को सशक्त बनाया जाता है, और हठयोग में शरीर को सशक्त भी बनाया जाता है तो निरोग भी बनाया जाता है, लेकिन राजयोग में आत्मा भी सशक्त तो निरोग भी शरीर भी निरोगी हो जाती है, लेकिन एक की याद से ही। तो ये राजयोग और हठयोग का फर्क। बाबा ने फिर एक आज की मुरली में कहा कि जो देवताओं के मंदिर होते हैं तो देवताओं के मंदिर में पुजारी को ही अधिकार होता है कि मूर्ति को माला पहनाना या पूजा करना, लेकिन बाबा ने कहा कि पुजारी भी पतित होते हैं। तो ये भी एक रसम रिवाज बनी हुई है कि पुजारी है, नाम का पुजारी है तो भले उसको चला देते हैं, लेकिन कोई कोई मंदिर स्ट्रिक्ट होते हैं कि पवित्र पुजारी रखते हैं। कोई कोई भारत में ऐसे मंदिर है कि जो संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है वही मंदिर की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, या कोई बुजुर्ग पुजारी रखते हैं तो ऐसे भी है। हाँ तो ऐसे तो ये भक्ति मार्ग की रसम रिवाज है कि पुजारी को ही हाथ लगाने का अधिकार है। हाँ महाकालेश्वर मंदिर और जो शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उनमें थोड़ा स्टिक रखा हुआ है। श्री सैलम में गए थे हम एक बार जो आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ बताए थे बहन जी कि यहाँ बहुत ही स्टिक है, और हम भी गए मंदिर में तो फिर ऊपर का कुर्ता निकालना ही पड़ता है कुर्ता निकाल के जाना पड़ता है, और वहाँ की जो विधि है वहाँ मस्तक टेकना ही होता है शिव के मंदिर में श्री सैलम आंध्र प्रदेश में, तो माथा जरूर लगाना पड़ता है अगर गर्भगृह में गए तो। नहीं तो फिर वो पुजारी टोक देता है कि आप, हाँ तो मतलब कई मंदिरों में ऐसी विधि विधान है कि कुछ नियम कायदे से चलना पड़ता है, तो ऐसे भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज चलती रहती है। तो बाबा ने फिर मुरली में होलिका को याद किया। हाँ होलिका बाबा को याद में, बीच में याद आ गई। वैसे हाँ सारी दुनिया ही होलिका है और इसमें जो शरीर तो विनाश हो जाएगा लेकिन आत्मा बच जाएगी, प्रहलाद माना आत्मा हो गई, हाँ शरीर माना हो बलि, हाँ शिव। तो इस प्रकार होलिका का भी बाबा ने कहा। फिर मुरली का वरदान था माया के विघ्नों को खेल समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता वो, माया के विघ्न ही मतलब हाँ खेलने का साधन है। जैसे कोई फुटबॉल होता है तो खेल मनोरंजन होता है फुटबॉल के द्वारा, हाँ नहीं ट्रांसफर नहीं करना है लेकिन ठोकर मारना है उसको, ठोकर मारो तो वो दूर हो जाएगा और मनोरंजन अनुभव करो। तो विघ्न कोई 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 भी देहधारी से आ सकते हैं या कोई परिस्थितिवश आ सकते हैं। तो जैसे रोज हम पढ़ाई पढ़ते 1 घंटा लेकिन 23 घंटा परीक्षा होती है, परीक्षा हाल में होते हैं, तो सोने में सोना ही है। तो इस प्रकार से मतलब परीक्षा हाल में ही हम दिन भर कहीं ना, और परीक्षा अचानक आ सकती है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ हाँ कहीं से भी आ सकती है, आंखों से भी आ सकती है, कानों से भी आ सकती है, मुख से भी आ सकती है, हाँ दूसरों को देख के भी आ सकती है, तो माया कहीं से भी आ सकती है। हाँ तो इस प्रकार माया के जो परखना है और माया के जो, जैसे इसमें उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बुजुर्ग के नाक कान पकड़ लेते हैं, दाढ़ी दाढ़ी को पकड़ लेते हैं, तो वो जैसे बुजुर्ग होते हैं डोंट केयर कर देते हैं कि हाँ ये बच्चे है, नादान है। नहीं अपने वाले। तो ये भी जो भी विघ्न आते हैं ये सब बच्चे हैं माया के, मतलब एक माया के बच्चे मतलब माया के बच्चे मतलब बच्चे समझकर नादान समझकर उनको वो तो आया और चला गया, आया और चला गया, कोई भी विघ्न अनित्य है बस। क्योंकि रुकेगा अगर रोक उसमें खो गए तो फिर वो पकड़ लेती है, इसलिए आया और चला गया। तो ये फिर बाबा ने ये उदाहरण दिया था। तो माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या या विघ्न बन आ सकती है। फिर स्लोगन था स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सहयोगी बन जाएंगे। तो इस मुरली में बाबा ने आज की मुरली में यही कहा कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। तो अपने को ये अनुभव करना है कि हम पढ़ाई माना निरंतर हम स्टूडेंट है पढ़ाई पढ़ने के लिए इस क्लास में ही है, और हमारा जो टीचर है स्वयं बाप टीचर सदगुरु है, स्वयं भगवान है, लौकिक में भी किसी किसी का होता है, बाप ही टीचर होता है। हाँ, तो बाप टीचर दोनों तो पालना देना पड़ेगा, बाप की भी और टीचर की भी। लेकिन हाँ, तो लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसको नशा होता है कि मेरा बाप ही टीचर है, और दूसरों को भी बताते रहता है, उसका भी थोड़ा सम्मान ऊंचा हो जाता है कि मेरा बाप ही टीचर है। तो दूसरे बच्चे होते हैं उसको बहुत मान देते हैं कि हाँ ये तो हमारे टीचर का बच्चा है, तो इस प्रकार मान भी बढ़ जाता है। तो हम भी वो स्वयं बाबा के बच्चे हैं, भगवान के ही बच्चे हैं डायरेक्ट। तो दूसरे भी हमें उस नज़र से देखते हैं कि नहीं, ये गॉडली स्टूडेंट है, कुछ ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बाबा ने खास यही होमवर्क मतलब दिया था। तो आज आज करना गया है तो हाँ, तो दिन भर तो यही रहे कि हम हमें पढ़ाने वाला कौन है उसको याद रखना है। और हाँ, परीक्षा हाल में भी है, और पढ़ाई हम ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है यह समझना है। हाँ, हमेशा सहयोग के नोट जेब में होना चाहिए। तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, फिर हाँ बाप सर्जन है, तो पेशेंट हूँ, नहीं पेशेंट हूँ तो वो कॉन्शियस आ जाएगा, तो मैं निरोगी बन रहा हूँ। हाँ, और दूसरा है कि मैं सूर्यवंशी राजघराने की आत्मा हूँ। सूर्यवंशी राजघराना मतलब उसमें सतयुग पूरा आ गया, सतयुग और सुखधाम को याद करना है, सतयुग और सुखधाम को याद करना है। और तीसरा लेंगे स्वीट होम, हाँ योग का प्रयोग क्या करें। प्रयोग करें कि हाँ कुछ नया नहीं, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं कि बाबा रूहानी सर्जन है, मुरली में सर्जन तो नहीं आया है, लेकिन हम ले सकते हैं कि रूहानी सर्जन है और हम आत्मा का ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो 5 विकारों की बीमारी है तो इसको निकाल रहे हैं, और निकालने के लिए पहले हमको उसके पास जाना पड़ेगा, सर्जन के पास। तो परमधाम में ही जाके, हाँ डायरेक्ट परमधाम में जाके ही हॉस्पिटल तो फिर सूक्ष्मतन में आएगा। हाँ वो तो एक किरण ही इंजेक्शन में भेज देगा तो इसका हम सूक्ष्मतन में योग का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे बाबा कराते हैं। तो जैसे कल रत्नाकर बाप बने थे, तो आज बाप टीचर सदगुरु और सर्जन का हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ गाइड भी है, लिबरेटर भी है, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं, गाइड बन नई दुनिया में ले जाते हैं। तो कमेंट्री कर लेते हैं एक रूहानी सर्जन की। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि लक्ष्य दूसरों को क्या देना है, तो कयामत का समय है, माना जैसे अनेक धर्मों में भी मानते, अनेक धर्मों में कि कयामत का समय आता है तो रूह जागृत होती है कब्र से। तो अभी बाबा कहते कि कयामत का समय अभी है, तो आत्माओं को भी 7 रोज की भट्टी में बिठाओ और उन्हें ज्ञान दान दो, तो वो भी जागृत हो जाएंगी। माना अभी का जन्म जैसे कि मुर्दा समान है, तो उनमें ज्ञान संजीवनी देकर उन्हें हम सुरजित कर सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा था कि पावन बनाओ ना, पावन बनने का ज्ञानदो। ओम शांति। मैं इस शरीर में विराजमान विशेष आत्मा हूं। और इस शरीर को यही छोड़कर फरिश्ता शरीर धारण करके मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में जा रही हूं। सूक्ष्म वतन में जाते ही एक बहुत ही शुभ्र प्रकाशित हेल्थ केयर नामक एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और वहां पर जाते ही रूहानी लिखा हुआ है, रूहानी चिकित्सालय, और जाते ही वहां वहां अपना अपना नामांकन भरना होता है कि वहां पूछा जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कब से है, और कहां जाना है, कौन से वार्ड में जाना है, तो वहां फिर भेजा जाता है। और एक बहुत ही पॉश कमरा है जिसमें सफेद सफेद लाइट है, और वहाँ रूहानी सर्जन जैसे कि आईसीयू होती है, एकदम नीट एंड क्लीन वाइट लाइट में, और वहाँ रूहानी सर्जन वेलकम कर रहे हैं। और वहाँ पर मैं जाती हूँ और वहाँ रूहानी सर्जन पूरा चेक करते हैं कि कैसे इन्हें बीमारी लगी है, पांच विकारों की जो आधा कल्प की बीमारी है, 63 जन्मों की बीमारी है, और यह बीमारी का इलाज शुरू होता है। और रूहानी सर्जन जो भी ज्ञान इंद्रिया है, जिन भी इंद्रियों में विकार बसे हैं वह निकाल रहे हैं, जैसे आंख, इसमें दृष्टि दोष है, आंखों में जैसी बीमारी लगी है नाम रूप की, यह बहुत पुरानी बीमारी है और अभी ये बीमारी पूरा आंखों का ऑपरेशन ही कर रहे बाबा, और रूहानी सर्जन, और ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए निकल रही है। फिर कानों में जो सुना है आधा कल्प से, वो सब समाप्त हो रहा है, और कानों का ऑपरेशन हो रहा है, और कानों में एकदम शुद्ध पवित्र महावाक्य ही जा रहे हैं, ऐसा यह ऑपरेशन किया जा रहा है। और भी जो भी ऑर्गन्स हैं शरीर के, उनमें जो भी बीमारियां हैं, वो सब रूहानी सर्जन ठीक कर रहे हैं। और मैं संपूर्ण निरोगी रोग मुक्त हो रहा हूं। और बाबा मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आप संपूर्ण निरोगी हो चुके हो, यह बीमारी निकल चुकी है, अभी परहेज रखना है आगे के लिए, फिर से यह बीमारी के कीटाणु अंदर ना आए, इसलिए जो ज्ञान मुरली का चिंतन करना है, या आत्मा का शुद्ध भोजन ही खाना है, और व्यर्थ बातें न सुनना है न सुनाना है, तो इस प्रकार का परहेज देकर बाबा फिर विश्वास दिलाते हैं और वरदान भी देते हैं, संपूर्ण निरोगी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी भव, और विदाई देती हुई फिर मैं इस स्थूलोतन में वापस इस शरीर में आ जाता हूँ। ओम शांति।